मुफ्त ने इंसानियत इसमें से आज हम देखेंगे और उजाला फैलता गया, सिर्फ उन लोगों के लिए जो पीछे का मिस कर चुके या जो करते गए उनके लिए। छोटा सा एक रिमाइंडर था कि पीछे हमने एक तवील टॉपिक यानी फिफ्थ टॉपिक इस बुक का क्या था, नबी सल्लम की ज़िंदगी जो तलवारों की छाँव में। हमने उसमें बहुत तफसील से देखा कि आप किस तरीके से मुख्तलिफ आजमाइशों में घिरे गए और अल्लाह ने आपको कितना हौसला दिया था और आप किस तरीके से इन सारी मुश्किलात पे काबू पाते गए। आज देखेंगे इस्लामी तहरीक और इस्लामी रियासत का फैलाव। अल्लाह के नबी सल्लम पर नाजिल होने वाली सूरतों में एक आखिरी सूरतों में से एक क्या थी, सूरत नसर। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन्ना सयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरह इन्नहु काना तव्वाबा। तो उसमें बात थी यदखुलूना फी दीनिल्लाह की अफवाजा, फौज दर फौज लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हुए। ये था असल में उजाला, ये था इस्लामी तहरीक का फैलाव और इस्लामी रियासत का फैलाव। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में ही मैं इस काम को फलता फूलता देखूं जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को लगाया। कुछ लोग अपने बच्चों को फलता फूलता देखकर खुश होते हैं, कोई घर को फलता फूलता देखकर खुश होते हैं, ये भी नेमते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई कारोबार को, फैक्ट्री को मिल में बदलते और मिल को बड़ी इंडस्ट्री में बदलता देखकर खुश होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आंखों की ठंडक क्या है कि आप हिदायत के सोर्स को, लोगों को कुरान के करीब आता देखे, आप लोगों की ज़िंदगियों में इस दीन का दाखिल होता देखें और इससे फिर डिप्रेशन और अंधेरे ख़त्म होते हैं। आप देखें ना, उजाला क्या है, रोशनी, और रोशनी क्या है, एक इंसान को रास्ता दिखाती है। तो जितना ज़्यादा आपके इर्द गिर्द रोशनी होगी उतना ही अल्लाह ताला आपके दिल को बहुत सुकून देगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज के डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ये कि हमारे इर्द गिर्द रोशनी नहीं रही, हम बहुत सारे अंधेरों में जीने लगे और उसके बाद बहुत कुछ। तो आइए किताब के एतबार से पढ़कर देखते हैं कि इसमें आज हमें किस तरह गाइडलाइन मिलेगी और आज के मुसलमानों को, ख़ास तौर पे लीडर्स को जो वाकई इस्लाम के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन भी है। बहुत से लोग तलवार के ज़ोर से ज़मीन के टुकड़ों के आर्जी तौर पर फातह बन जाते हैं, समझ आ गई। यानी कुछ लोग हैं तलवारें इस्तेमाल की और उसके बाद फ़लाँ मुल्क के ऊपर कब्ज़ा, उसके ख़जानों पे कब्ज़ा, उसकी चीज़ों पे कब्ज़ा। मुराद ये है कि वक्ती तौर पे वो दुनिया में बड़े बनते हैं। बहुत सी बादशाहियतें और आमरियतें जिबर के ज़ोर से कायम होती हैं। यानी बहुत सारे बादशाह और आमिर, आमिर किसको कहते हैं, डिक्टेटर्स, यानी आप कह लीजिए बज़ोर अपनी बात मनवाते हैं और कशाकश मुफाद के बेशुमार फैसले जंग के मैदानों में तय पाते रहे हैं। ये तो आज भी हम देख रहे हैं। इवन आज का दौर बड़ी कर्टसी का दौर है और ऐसे मुंह पे खड़े करके किसी को तलवार नहीं चलाई जाती, लेकिन इस वक्त भी आप देखिए तो लोग अपने लॉज और अपने रूल्स और अपनी आइडियालॉजीज़ को मनवाने की पूरी कोशिशों में लगे होते हैं। और ऐसे लगता है कि ऐसे वक्तों में एक इंसान बस यही कर सकता है, हालांकि हकीकत ऐसे नहीं है। लेकिन दुनिया की कोई भी इनकलाबी तहरीक हो, इसे अपनी किस्मत का फ़ैसला हमेशा राय आमा के दायरे में करना होता है, ये भी अहम है। देखिए जब तक लोगों की राय आपके बारे में अच्छी नहीं होगी ना, तो आप इनकलाब नहीं ला सकते। तो हर शख्स जिसने इनकलाब बरपा किया ना, उसने पहले लोगों की सोच और उनके दिलों को मुसख़्ख़र किया। इंसानी कुलूब जब तक अंदर से किसी दावत का साथ देने पर आमादा ना हो और अपने जहन और किरदार को इसके सांचे में ढालने के लिए राजी ना हो जाए, महज जबरो तशद्दुद से हासिल किए हुए झंडे इसके लिए मुफीद नहीं हो सकते, बल्कि उल्टा वो इसकी कामिल बर्बादी का सबब बन जाते हैं। बस हर असूली तहरीक का असल मिजाज तालीमी होता है और इसके चलाने वालों में मुरबियाना यानी तरबियत से है और मुअल्लिमाना इल्म से, मुअल्लिम से शफकत की रूह काम कर रही होती है। असूली तहरीकों की निगाह में ज़िंदगी एक मदरसे की नौईयत रखती है और अफराद इंसानी इस मदरसे के तुलबा होते हैं। इन तुलबा की मजमुई फलाह तकाजा करती है कि शरारत पसंदों की इसलाह के लिए और इनके असर से शरीफ और मुतवसत अनासिर को महफूज रखने के लिए तादीब, तादीब कहते हैं अदब सिखाने का असा, तादीब का असा भी कभी कभार हरकत में आता रहे, लेकिन मजमुई फिजा बहरहाल तुलबा के हक में रहमत और शफकत की फिजा होती है और ख़ुद तादीब के असा की हर जुम्बश में भी उस्ताद के मुरबियाना जज्बात ही मोजज़न होते हैं। इतनी बात पे रुकने को दिल ही नहीं कर रहा था। इस सारे पैराग्राफ को जो आखिरी चंद लाइनें हैं इसको हाईलाइट कीजिए। असल में ये है आज के दौर की मिसिंग चीज़। अगर आप वापस पलट कर देख लें तो ये जो चीज़ है ना कि इनकलाब कब लाए जाते हैं, जब लोग खुशी से आपके साथ तैयार हों। जब तक किसी दावत का साथ देने वाले खुद अपने दिल की खुशी से, जिसको आज आप क्या कहते हैं, वॉलंटियरली, फ्री विली, जब तक आपका साथ नहीं देंगे, ये चीज़ जो आप उनको देना चाहते हैं वो लेने वाले भी हों, आप जो काम करना चाहते हैं वो भी करने वाले हों, इसके बगैर याद रखिए कभी कोई काम नहीं हो। और इस चीज़ को दिन रात हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जब कोई चीज़ किसी का पैशन बन जाती है तो कहना नहीं पड़ता, बल्कि यही कहना पड़ता है आराम करें, सो जाएं, छोड़ दें, हो गया जो होना था, ये पैदा करने की ज़रूरत है। यही आपको अपने बच्चों में पैदा करनी है अगर आप उनको दीन की तरफ भागता देखना चाहते हैं, यही अपने साथियों में, यही कुरान सुन्नत के तालिब इल्मों में डालनी पड़ेगी कि आप भी भागें। फिर आप देखिए कि फिर वो आपको भी नहीं पूछेंगे और खुद से खुद आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे लोग, अक्सर ये होता है कि वो दूसरों को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में साथ रखते हैं, तो याद रखिए कि ज़बरदस्ती का सौदा कभी निभा नहीं है। आज तो ले जाएंगे, कल वापस कर जाएंगे, नहीं भी वापस करेंगे तो उस पे परेशान इतने होंगे कि नेक्स्ट टाइम आपकी बात भी नहीं मानेंगे। तो इस सारे हिस्से पे नोट कीजिए, दो खूबियाँ इसमें आम हैं, बड़े लीडर्स की खूबियाँ मुरब्बियाना और मौलिमाना शफकत। मुरब्बियाना तरबियत से, कमा रब्बयानी सगीरा, और मौलिमाना इल्म से है। जब तक मुआशरे में इल्म काम नहीं करेंगे और इल्म देने वाले आपके साथ शफकत से काम नहीं करेंगे और आप उनसे प्यार मोहब्बत से वो चीज़ नहीं लेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। और आप देख लीजिए कि इसमें एक और मुश्किल लफ्ज़ है, तादीब का सा, यानी उस्ताद को कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है अदब सिखाना, तादीब। माँ को भी सख्ती करनी पड़ती है बच्चों को अदब सिखाने के लिए, आका को भी करनी पड़ती है, मालिक को भी करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि अदब सिखाना भी एक शफकत का जरिया होता है, वरना तो कर दिए जो कर रहे हैं करते रहें, कोई नहीं बताएगा आपको आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं चल रहे, आप सही नहीं बोल रहे, आप सही नहीं लिख रहे, सही नहीं देख रहे। तो हमेशा अपने आप को खुले दिल से पेश कर दीजिए। कैसे? क्योंकि इसके बाद फिर आप निखर जाएंगे। सच्चाई के कलमे और नेकी के निज़ाम को लेकर जो बंदे अल्लाह के तारीख के मुख्तलिफ अदवार में उठे, उन्होंने चाहते या ना चाहते शर और फसाद की सरकूबी के लिए मैदान जंग में भी कदम रखा है। ये बड़ी अहम बात है। इसको अगर मैं एक आसान जुमले में बोल दूँ ना कि हर दौर में तारीख के अगर वर्क पलट के देखिए कि जो उस्ताद होते थे ना इल्म सिखाने वाले, फिर उनको बाज़ दफ़ा मैदान जंग में भी जाना पड़ता था और तलवार से असाए तादीब का काम भी जुज़वी हद तक लिया है, मगर फिल हकीकत इनका मजमूई काम हमेशा मुरब्बियाना व मुशफिकाना रुख के साथ ठीक तालीमी अंदाज से जारी रहा है। क्या पता चला? तालीम और जिद्दोजहद जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी की भाग दौड़ है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसको और समझिए, आज हमारे क्या मदरसा सिस्टम, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1, 2, 4, 10, 10 साल भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुल्क पे हमला हो या दुश्मन आए तो फौज कहीं और है। अब ये है असल में इस वक्त का एक बहुत बड़ा डेलमा। फौज ने कुरान नहीं पढ़ा होता अमूमन, या दीन नहीं सीखा होता, और जो दीन सीखते हैं उनको दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं आता। आप ज़रा सा सीरत के आईने में पीछे जाइए, मक्की दौर में आप पढ़ के आए हैं, 20 बुक में भी पढ़ा है हमने, क्या कि जो लोग असहाबे सुफ़ा थे मदनी दौर में, बल्कि आप अगर इसको देखें तो आप देखेंगे असहाबे सुफ़ा कौन थे, हॉस्टलाइट्स। इल्म सीखने के लिए मुख्तलिफ जगहों से मस्जिद नबी में जमा हो गए। क्या थे वो? आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी। यही जमा होके जाते थे जंगों में। और बेस्ट थिंग भी यही है, जब कुरान बंदा पढ़ता है तो अपने इर्द गिर्द जुल्म और बर्बरियत देख नहीं सकता। तो जब कुरान पढ़े हुए लोग तलवार उठाते हैं ना, तो वो कलम उठाने की तरह बड़े मुख्तात होते हैं। गलत नहीं लिखते ना, तो वहाँ गलत जगहों पे खात नहीं रखा जाता। इसलिए देखिए कि सहाबा ने कभी किसी को गुस्से में नहीं मारा, कभी जज्बाती नहीं मारा। तो आज के दौर के अंदर करने का काम ये है कि फ़ौज के लिए कुरान और सुन्नत और सीरत की तालीम को फ़र्ज़ करने की ज़रूरत है। फिर देखिए कि वही बात है ना कि हाथ है बंदा मोमिन का हाथ अल्लाह का हाथ, फिर अल्लाह की मदद भी आती है। ये जो फरिश्ते जंगों में उतरे थे ना, ये सहाबा के इसी ईमान की वजह से उतरते थे। अल्लाह को पता था इनको कोई नहीं लड़ना आता, ये तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, चलो जाओ फरिश्तों तुम इनका साथ दो। याद रखिए कि आप जब अल्लाह के रस्तों में निकलते हैं ना, तो आपको काम करना आता है कि नहीं आता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को कराना आता है। आप नहीं कर पाएंगे ना, अल्लाह किसी फरिश्ते से करा लेगा। असल बात जो खुलासा है आपके लिए और मेरे लिए, कि इन कुर्सियों पे बैठ के पढ़ना बहुत आसान है। आप और भी इंशाल्लाह 10 साल पढ़ेंगे, और इसके बाद अपनी ज़िंदगी के आखिर तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मज़ा बड़ा आता है। लेकिन जो इस पैगाम को फैलाने की जिद्दोजहद, जो इसकी भाग दौड़, वो भी आप ही ने करनी है। अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो कुछ साल के बाद आप बोर हो जाएंगे। बहुत पढ़ लिया, क्या करें, अब घर वाले ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोर्स कर लो, वो कहते हैं जॉब कर लो, चलो अब मैं कुछ और कर लूँ। फिर टेस्ट चेंज करने के लिए आप किसी और स्कूल में चले जाएंगे, फिर उनसे पढ़ते हुए आपको लगेगा ये बहुत अच्छा है, कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा नहीं, अपना भी कोई बुरा नहीं था। ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि आप अपने शहर के लिए तड़पें, अपने लोगों के लिए मेहनत कीजिए। और ये मेहनत वक्त चाहती है, इसमें घर बिगड़ते हैं, इसमें खाने का वक्त पीछे टलता है, इसमें बच्चे रोते हैं, इसमें कई दफ़ा इंसान को बिल्कुल अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन असल में इसके बाद जो सुकून और खुशी है, वो सहाबा की और नबी की सीरत से आप देख लीजिए। सेल्फलेस काम करने वाले, कोशिशों को तेज़ करने वाले वही लोग होते हैं कि जो अपने दिल की खुशी से ये काम करते हैं। दुआ करें हमारे दिल ना पलटे। अगर आज दिल में ख्वाहिश है, तो फिर हम निकलें, भागें, हमने ये काम करना है, कोई बाहर का नहीं करेगा। देखिए दुश्मन आ जाए तो अमूमन फिर दिफा कौन करता है? फौज करती है ना, क्योंकि ट्रेनिंग तो उसको मिली, दिफाई सारी प्रैक्टिस तो उसने सीखी। तो आप कुरान पढ़कर अगर कुरान के और ईमान के और इस्लाम के पहाड़ बनते जाएं, लेकिन आप अमली जिद्दोजहद में इतने सुस्त, आपको यहाँ से उठ के 4 कदम पे जाना पड़े मुश्किल, इस क्लास के बाद कहीं जाना पड़े तो मुश्किल, वीकेंड्स पे कुछ करना पड़े तो मुश्किल, वीकडेज बड़ा बिजी है, वीकेंड फारिग कर दें, सुबह बड़ी बिजी है, शाम फारिग कर दें, तो फिर ये जिद्दोजहद नहीं है। मुझे तो एक ही बात समझ आई है ज़िंदगी में, यकीन करें कि किसी भी बस्ती में चंद तड़पने वाले लोग होते हैं, पूरी बस्ती का मुकद्दर समझ जाता है। नताइज अल्लाह के हाथ है, कोई उसे लेता कि नहीं लेता, और लेता है। याद रखिए, आप प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत अमली से लोगों से बात करें, सबको पता है कि ये हमारी खुराक है। तो सारी बात में से फिर अमल की बात, कि अमली जिद्दोजहद में कूदें, कुरान की हरारत लेते रहे, इल्म का पानी मिलता रहेगा ना, तो दिल भी ठंडा रहेगा, दिल भी नरम रहेगा, और पनपने और फलने फूलने को दिल करेगा। आगे से इल्म लेना छोड़ देंगे ना, तो सूखी डंडी की तरह दरख्त के साथ चिपके तो रहेंगे, लेकिन बोरिंग, कुछ भी आपकी ज़ात से नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ही जोश दे अपने अपने कामों को करने का। इनका असूल हर दौर में ये रहा है कि जिसे नई जिंदगी हासिल करनी हो, वो दलील से हासिल करे। एक एक जुमले पे यकीन करें, बात करने को दिल करता है, इतना नपातुला जुमला है। आप चाहते हैं कि आपको नई जिंदगी मिले, तो दलील से लें। और जिसे इस जिंदगी से महरूम रहकर अपने आप को मौत के घाट उतारना पसंद हो, वो दलील ही के मारने से मरे। सूरत तौबा 10वें पारे का पहला पेज है, उस पर आपको ये बात मिल जाएगी कि जो जिए दलील के साथ जिए, जो मरे तो दलील के साथ। याद रखिए कि हमारे पास जीने की भी एक दलील होनी चाहिए, और वो क्या है? वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मैंने इसलिए जीना है कि मैं अल्लाह का बंदा बनूं। उसके बाद फिर अगली जीने की दलील क्या, कुंतुम खैरा उम्मतन, मैंने इंसानियत को इस प्यारे पैगाम से मिलाना है। इस पे मोमिन जीता है। सारी ज़िंदगी शहादतें हक की गवाहियाँ देते देते जो वक्त और हालात की नौीयत होती है उसके मुताबिक काम कर रहा होता है, और एक वक्त आता है कि फिर वो इस दुनिया से जाता है शहादतें हक की गवाहियाँ देते हुए कि तुम इनको मुर्दा ना कहो, ये अल्लाह के रास्ते में मर गए। तो मौत भी हक में आए, शहादत में आए। देखिए शहीद तो एक ही दफ़ा मर जाता है ना जंग में जाकर, हालांकि उससे पहले वो अपने नफ्स पे कितने पाँव रख चुका होता है, कुचल कुचल के आता है। वरना आसान काम है जंग में जाना, जहाँ मरने का 98% यकीन हो, कोई बच के आ जाए अल्लाह की रहमत से ही आता है। और जबकि वहाँ सामने आमने जंगें होती थी, तलवारों तीरों की छाँव में थे, पिछले पूरे टॉपिक में पढ़ कर आए हम लोग। तो कौन जाता है जो पहले नफ्स को दबा चुका होता है, जो अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर चुका होता है, जो दुनियादारियों के झंझटों से अपने आप को आज़ाद कर चुका होता है? तो आप ज़रा सोचिए कि जो जान दे दे उसका इतना अजर कि बल अहयाउन और युरज़कून इंदा रब्बिहिम की खुशखबरियाँ कुरान में। तो जो कदम कदम पे अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशों को छोड़े, अपनी इरादों को तमन्नाओं को मौत के घाट डाल दे, और वो एक दिन नहीं शहीद, और उसकी जान जा रही, उसकी सेहत जा रही, उसकी खूबसूरती जा रही, उसका अपने आप से बेन्याज होना जा रहा, तो क्या मालिक उसकी कदर नहीं करेगा? तो ये कदम कदम की राह हक की जो भाग दौड़ है ना, आपको बहुत सारी बीमारियों परेशानियों और तकलीफ़ों से बचाती है। इसमें मरिए, इसमें जिए, ये आपकी ज़िंदगी है। इसके बगैर तो सिर्फ एक लाइबिलिटी है, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और अगर दीन की समझ कम हो तो वो जिम्मेदारियां बाज़ दफ़ा बोझ लगती हैं। दो वक्त का खाना पकाना कुछ औरतों को मुश्किल लगता है, घर की सफाई एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है, और अगर आप अल्लाह के रस्तों में भागते हैं तो ये सारे काम आपको बहुत छोटे लगते हैं। अपने आप को झंझोड़ें, कहाँ खड़ी हो, किताब पूरी होने वाली है, आखिरी टॉपिक है बुक का। अगर मेरी आपकी वजह से उजाला नहीं फैल रहा, अगर मेरे और आपकी वजह से फैलाव नहीं हो रहा इस्लाम का, वसतें नहीं आ रही, तो फिर याद रखिए कि हम खतरे में हैं। नबी की इस उम्मत होने का हक अदा करना है, जाने से पहले अपना हिस्सा इंसानियत को देके जाना है, और इसके लिए दूसरों से सीखें, दूसरों को देखें, अपने आप को देखें, अपनी अच्छी खूबियों को देखें, दूसरों की खूबियों को देखें, अपनी खामियों को दूर करें, और अपने अंदर एक नई सोच नई रूह डालकर काम करें। अल्लाह ताला आपसे देखिएगा बहुत खैर लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी इकदामात को देखें तो मार्का बदर से लेकर फतह मक्का तक, फतह खैबर समेत कुल 5 बड़े मार्के हुए, जो दरअसल हकीकत के लिहाज से सारे के सारे मुदाफियाना ही थे, डिफेंसिव वॉर थी। क्या होती है ये? दुश्मन पहल करता है और मुसलमान अपना बचाव करते हैं। लेकिन इनमें से अव्वलु ज़िक्र तीन, तो कौन से अव्वलु ज़िक्र तीन जो शुरू में हुए, बदर ओहद जी और खैबर। अव्वल जिक्र तीन तो इसी सूरत में लड़े गए जबकि दुश्मन ने चढ़ाई करके मदीना पर धावा बोला। ले दे के दो ही कार्रवाइयाँ मदीना से खुद नबी सल्लम ने पेश करके की, यानी एक फतेह मक्का बेमा जंगे हुनैन के और दूसरी फतेह खैबर के लिए। बस इन दो ही इकदाम में फैसला हो गया। मुद्दत के लिहाज से देखें तो मार्के बदर से फतेह मक्का तक कुल जमाना 6 बरस का था। नबी सल्लम ने अपने अजीम तबलीगी और तालीमी और तामीरी और इस्लाही कारनामे में 23 साल 23 ईयर्स की लंबी मुद्दत खपाई, और इसमें से फ़क्त 6 बरस ऐसे हैं कि जिनमें तालीम इंसानियत के मुख्तलिफ कामों के साथ साथ हरीफों की शमशीरें जंग पसंद का मुकाबला भी मजबूरन करना पड़ा। इंतहाई मुबालगे से अंदाज़ा करें तो भी सारे के सारे मार्कों में मजमूई तौर पर 15,000 से ज़्यादा अफराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने ना आए होंगे। इनमें से सिर्फ 759 जानों को रास्ते से हटाने के लिए अरब की कई लाख की पूरी आबादी समर सुधर जाती। 10 बरस के अरसे में जो तारीख की वुसअतों में बहुत ही महदूद दिखाई देता है, अरब जैसे सहरा की जिंदगी को एक मदरसे फलाह में बदल देना, इसको हाईलाइट कीजिएगा। अरब क्या था? सहरा, डेजर्ट, गैर अजीज आरन, वहाँ क्या होगी? जिंदगी एक मदरसा बन गई। और कौन सा मदरसा? जिससे फलाह फूटती थी और तमाम बिखरे हुए कबाइल और इंतहाई वहशी सर फेरे और जंगजू अफराद को इसमें दाखिल कर लेना और फिर इनको अजीम सच्चाइयों और पाकीज़ा अखलाक की तालीम देने में कामयाब हो जाना। ना सिर्फ तालीम देना बल्कि नौ इंसानी के लिए इनको मुअल्लिम व मुरब्बी बना देना, शायद नबी सल्लम की नबूवत का सबसे बड़ा हिस्सी, यानी जिसको महसूस कर सके, जिसको छू सके, सबसे बड़ा हिस्सी मौजदा है। आपने पता नहीं ना आखिरी जुमलों को क्या लिया है, मुझे तो ऐसे लगा ये मेरे दिल की पुकार है। देखिए इल्म को आम कीजिए, किसी जगह की सबसे बड़ी तब्दीली बहस मुबासे नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं, फिरकेबाजी नहीं, कौन ज़्यादा अच्छा कौन कम नहीं, कौन हक पे कौन बातिल नहीं, और हर वक्त जंगे नहीं है नबी की ज़िंदगी में। बहुत मुख्तसर अरसा है, सारा वक्त जो काम आपने किया वो इल्म का काम किया, तरबियत का काम किया, किरदार साजी की है, तस्किया तरबिया, वो नबी जिसने युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम, ये काम करने के आज के दौर के लीडर्स को, आज के दौर के बड़ों को छोटों को ये बात समझनी है, जब तक हम अपनी नस्लों को तालीम के जेवर से मनव्वर नहीं करेंगे उनमें रूह ही नहीं पैदा होगी, फिर वो जिहादाना सिफत पैदा नहीं होती, वो एक बेखतर कूद पड़ने वाली सिफत नहीं आती। और आज दुश्मन ने ये बार चला कि इल्म के इस बाब को काट दिया। दुनिया की तालीम इतनी सर पे सवार हुई, 20 साल पढ़ के भी लगता है, और भी ना 2 साल पढ़ जो, और दीन चाहे नमाज भी ना आती हो, चाहे कुरान का एक लफ्ज़ ठीक ना पढ़ सके, तो करने का काम जंग नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है, पैसे और झगड़े नहीं है। हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि लोग हिदायत पे आ जाए। देखिए इसके लिए कई मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से, साल के अगर 360 देना है ना, तो उसमें से मेरे हाल 300 दिनों में मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को किसी न किसी कॉज में भागते भी देखती हूँ। लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरह का बन गया कि अमूमन मैं वहाँ बुलाई जाती हूँ जहाँ कोई कोर्स शुरू होता है या ख़त्म होता है, और ये पीक के दिन होते हैं ना, और मैं वहाँ के साथियों को फिर जो काम करते देखती हूँ तो वाकई फिर आंखें ठंडी होती है। वाकई जिसको कहते हैं ना कि वजालना लिलमुत्तकीना इमामा, और जिसको कहते हैं ना कि रब बना हब लना मिन अज़वाजीना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, आंखों की ठंडक, यानी खुशी से आंखें भीग जाएं और ठंडी हो जाए, ये वो वक्त होता है जिसमें इंसान को फिर और जीने को दिल करता है और सीखने सिखाने को दिल करता है। किसी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं, आप सब तो इतना कुछ करते हैं, हाउ कैन आई पे यू बैक। तो उनका जवाब सुन के मेरा दिल खुश हो गया, कहने लगे उस्ताद आप पढ़ाएं, हमें आपसे ये चाहिए। वाकई मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने मेरी सही कीमत पहचानी है। किसी को अगर किसी काम पे आप तारीफ कर देते हैं कि आपने उसका हक दे दिया, प्यार करते हैं हक दे दिया, गिफ्ट पकड़ा देते हैं स्क्रीन पे बुला के स्टेज पे, हक दिया नहीं दिया, इल्म दीजिए। वाकई उस दिन से तो फिर जब मैं कभी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा भी सोने लगती हूँ ना, तो मैं हड़बड़ा के उठती हूँ, और बिल्कुल मुझे आज भी यही कैफियत हो रही थी। रात इतनी लेट आए सब लोग, और जब मैं अभी सुबह उठी आपकी क्लास से पहले भी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहले उठ गई, तो मैंने मैसेजेस चेक किए तो रात भर के मैसेजेस, तो मुझे शर्म आई अपने ऊपर कि मैं क्यों सो गई, ये तो नहीं सो रहे, या अगर सोए होंगे तब उठ के होंगे। तो फिर मेरे अंदर एक नई रूह आई कि नहीं मुझे और पढ़ाना है। तो याद रखिए हम एक दूसरे से एनर्जी लेते हैं, हमेशा उन लोगों के बीच में रहिए जिसमें हलचल है, जिसमें एक जोश एक जज्बा है, और अगर आपको जज्बा कम महसूस होता है आप जज्बे दीजिए। यही इस बिरुवा साहब बिरुवा रा भी तू, एक गिरने लगे दूसरा थाम ले, एक ठंडा होने लगे दूसरा गर्म करे, एक ढीला है दूसरा उसको ले जाए, एक दुनिया की तरफ झांकने लगे दूसरा उसको पकड़ ले, एक किसी मजबूरी के फंदे के नाम पे दीन से दूर है दूसरा पकड़ ले, खुद पे तरस ना खाए, रोज आते हैं हर वक्त आते हैं, हाय या वीकेंड पे भी आए, हाय ये भी समय तो नहीं, देखिए याद रखिए अपने पर रहम खाना छोड़ दीजिए, रश करिए कि अल्लाह आपको फिर मौके दे रहा है, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे दीन के इस पौधे पे बहार आएगी। और यकीन करें कि सिर्फ किताब से पढ़ा देना लोगों को दीन की तरफ नहीं लाता, उनको इज्जत देना, उनको प्यार देना, उनको इनवाइट करना, उनको गिफ्ट देना, उनके लिए अच्छे खानों का इंतज़ाम, उनके लिए बैठने का इंतज़ाम, क्या कोई शौक़ से शादियों की तैयारियां करे, क्या कोई शौक़ से अच्छे कपड़े बनाए कि हम अपनी खुशियों में पहने, जब ये सब दीन के नाम पे लगता है अल्लाह बड़ा कदरदान है। याद रखिए वो बंदे की इतनी कदर करेगा कि बंदे को यकीन नहीं आएगा, सिर्फ अपना दिल डाले इसमें मारे बांधे। मैंने ऐसे भी कभी कई चीज़ें देखी हैं, प्रोग्राम हो रहा है, हाय क्या करें मुश्किल है, कोई आता है कोई नहीं आता, फ़ोन कर करके बुलाए उस प्रोग्राम में, और वो जिसमें एक एक चीज़ की नज़र रखी जाए दिन रात, उसमें फ़र्क होता है, लोगों को पता होता है हम उनको कितनी इज्जत दे रहे हैं, क्या मिल रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारा दिल पड़ जाए इस काम में, हम किसी के कहने पे ना करें बल्कि अपने दिल के कहने पे करें, बस ये अमर हर किस्म के शक व शुबे से बालातर हो जाता है कि इस्लाम की इनकलाबी तहरीक के खिलाफ जाहिलियत की कशमकश का फैसला होने में जंगी मार्कों का कितना भी असर पड़ा हो। अगला जुमला आपके लिए, इसको हाईलाइट कीजिएगा। लेकिन बहरहाल फैसला, फैसले का असल मैदान राय आम का मैदान था, लोगों की राय बदली के नहीं, लोगों के अकीदे सोच ये बदली के नहीं, और ये इल्म से होता है याद रखिएगा, बल्कि ज़रा रूहानी जुबान में बात कहें तो दिलों का मैदान था। यानी मैदान जंग तब्दीली नहीं लाता, वहाँ तो आप उन अनासिर को हटाते हैं जो इस्लाम दुश्मन है या इस्लाम के खिलाफ आगे, वो चंद होते हैं, असल बात है कि अवामी राय को बदले, सोच बदली है लोगों की। अरब के लाखों मर्द और औरत मफतूह हुए तो इसी मैदान में दलील और अखलाक के असलहे से मफतूह हुए, यकीन करें इसको भी सोने के पानी से लिखना चाहिए। आप देखिए लाखों थे ना नबी सल्लम के इर्द गिर्द जब आप दुनिया से रुख्सत हुए, हजरत अलविदा को याद कीजिए, उनके दिल मुसखर हुए ना, इस्लाम कबूल किया, वक्त के रिवाज से पलटे, खानदान बिरादरी से बूहस मोल लिया ना, तो वजह क्या थी? क्या अल्लाह के नबी तलवारों की जोर पे कलमा पढ़वाते थे? नहीं, दलील और अखलाक का असलहा ये लेके आइए, इल्मी पुख्तगी पैदा कीजिए तो दलील देंगे लोगों को, और चेहरे पे मुस्कुराहट और केयर डाल दें दिल में तो अखलाक अच्छा हो जाएगा। ये दो चीजें आपके इदारे में लोगों को लाएंगी कि जो आप पढ़ाते हैं दलील के साथ पढ़ाते हैं, उनका दिल गवाही देगा कि ये हक है, और दूसरी आपका उनको देकर खिल जाना, आपका अखलाक देखकर लोग के, हम तो सिर्फ इनका स्माइल और इनकी खुशी देखकर आते हैं, और अगर हमारे अपने ही चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हम खुद ही अपने हालात के जंगल में इतने दुखी हैं कि मुस्कुराए हुए मुद्दत हो गई, तो याद रखिए लोग हमसे रोना नहीं सीखने आएंगे, वो तो पहले ही बड़ा रो रहे हैं। चेहरों को मुतमईन फराह दिल खुश रख कर लोगों को बुलाएं, फिर देखिए उनको पता चलेगा कि हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए कि जिसमें हमारे जहन की भी अल्हम्दुलिल्लाह तस्कीन हुई, हमें दलील मिली, इल्म मिला, पुख्ता नॉलेज है, लेकिन साथ साथ उनको सुकून और खुशी और अच्छा अखलाक भी मिलेगा। अल्लाह हमें सही बना दे। इसी हकीकत को वाज़ेह करने के लिए अब यहाँ ये देखा जाएगा कि हर जहती यानी चारों तरफ से फ्रॉम ऑल डायरेक्शन हर जहती मुखालफतों और मर्दाफिगन मुजाहमतों के नित नए तूफानों के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ कि कलील मुद्दत में 10-12 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई कसीरुल तादाद औलाद आदम इस्लामी निज़ाम हयात के साए में आ गई। सुबहान अल्लाह, आप देखिए कितना मुख्तसर सा वक्त था ना, और 10 से 12 लाख मुरब्बा मील जगह, ये छोटी नहीं होती। अल्लाह अकबर, तौ बर तौ तारीकियों का सीना चीर कर कैसे हूरे सुबह मुस्कुराई, और इसकी मुस्कुराहटों ने चारों तरफ एक पाकीज़ा उजाला फैला दिया। हकीकत यह कि दावत अगर हक हो, ये हाईलाइट करिएगा, नंबर एक दावत हक हो, दूसरी बात तहरीक अगर इंसानी फलाह पर मबनी हो, यानी आपकी मेरी ये सारी हरकतें जो है ना, ये इंसानों की फलाह के लिए हों, बेनिफिट द पीपल, और इसके अलम बरदार यानी झंडा उठाने वाले मुराद अंसारुल्लाह और लीडर्स, अगर मुखलिस और एसार पेशा हों तो मुखालफतें और मुजाहमतें हमेशा इनकलाबी काफ़िले के लिए मुहमीज़ का काम देती हैं। हर रुकावट एक संगे मील बनती है, यानी जो दुश्मन की चीज़ें होती हैं ना, वो आपके लिए मददगार साबित हो जाती हैं। रास्ते का हर कांटा रहबरी करने लगता है, दर्द की टीसें जब फुगां का रूप इख्तियार करती हैं तो फुगां ही बांगे जर्स बन जाती है। मुश्किल उर्दू है ना, अंदर दर्द पैदा होता है ना आपके, तो आपकी आवाज़ में एक फुगां, रोने को कहते हैं दुख, सोज, और सोज फिर एक ऐसी अजान, बांग कहते हैं अजान को, जर्स कहते हैं घंटी को, यानी जब अंदर दर्द होता है और जुबान पे वो एक दर्द मंदी के अंदाज से आता है तो पूरी दुनिया में घंटियां बजने लगती हैं, पैर लहू लुहान होते हैं, तो खून की हर बूंद को शरारा इश्क एक चिरागे रोशन में बदल देता है। हमारे खून आलूद हुए पाँव, हमारे पाँव पे इस रास्ते में खून बहा, अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारे तो पाँव जरा से थकने लगे, हम कहते हैं बस टू मच, वो लटका लटका के बैठते हैं ना, पाँव ही सूज गए, अल्लाह अकबर, वो बह गए उनके पाँव, वो हमारा नबी चल चल के ताइफ तक गया और जूतियाँ चिपक गईं, तो फिर क्यों ना रोशनी होती। मुझे तो आज के इस टॉपिक से इतनी एनर्जी मिल रही है, यकीन करें आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, एक हलचल है हमारे इर्द गिर्द, दिल दिमाग मुतमईन लेकिन बाहर हलचल, और दुआ ये कि अल्लाह आज का दिन बहुत सारों को इस किताब से जोड़ने का जरिया बन जाए। जो कोई एक शादी की तैयारी है उसको आप 10 में डाल लें, उससे भी ज़्यादा तैयारियां करने को दिल करता है, जब ये उम्मीद हो कि इसके बाद लोग अल्लाह की किताब से जुड़ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने रोशनी फैलाई, दुआ करते हैं आज कि अल्लाह हमारी ज़ात से भी रोशनियाँ फैला दे। यही वजह है कि सच्चाई अगरचे एक अकलियत के साथ उभरती है लेकिन अक्सरियत को फतह कर लेती, इसको भी हाईलाइट करें। याद रखिए, शुरू में हक वाले बहुत थोड़े होते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अल इस्लाम उबदाउ गरीबा, इस्लाम गुरबत के साथ यानी अजनबियत के साथ शुरू हुआ और एक दिन आएगा कि फिर दोबारा अजनबी होगा। आज आप सच दिखाएं लोगों को, लोग उस पर इतना वहम शक, सच्ची ये ठीक है, वाकई ये काम जो हो रहा है सही है, लेकिन आप देखिए कि जब आप हक के साथ निकलते हैं ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको कसरत में बदल देता है। तन्हा चले थे लोग, मिलते गए और काफिला बनता गया, और आजकल तो चूँकि साथ 30वें पारे की भी सूरतें चल रही हैं, ये सुबह सीरत का सेशन, बाद में 30वें पारे की वो सूरतें जो नबी की ज़िंदगी के अंदर एक कह लीजिए कि अल्लाह की तरफ से तसल्ली नाम है, तो उनको पढ़कर वाकई वो आयत सारा दिन दिमाग में रहती कि यदखुलू नफी दीनिल्लाहि अफवाजा। तो दुआ कीजिए कि हमारी इस अकलियत को अल्लाह अक्सरियत में बदल दे, एक कुर्सी खाली ना हो, एक जगह खाली ना हो, कतरा कतरा कोना कोना हमारी ज़िंदगी का, हमारे घरों का, हमारी ज़ात, हमारे माल का अल्लाह निचोड़ ले अपने रस्तों में। अब आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस्लाम की जो तहरीक चलती है फिर किन किन कुव्वतों से काम लेकर राय आमा के दायरे में तेज़ी से कदम बढ़ाने के रास्ते बने। यानी आप कह लीजिए कि मैदान जंग में तो तीर चलते हैं, तलवारें चलती हैं, और इसी तरह से कुछ और मिंजबीक और कुछ इस तरह की मिंजनीक जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये जो दिलों को मसख़र करने का काम, या जिसमें आप कह लीजिए कि अपने आप को आप रोशनियों में देखते हैं, अपनी ज़ात से उजाला फैलाते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको क्या टूल्स चाहिए, इसको इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे।